Surgióme.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां और आगामी अभियानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारत अपनी विकास की राह में जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अंतरिक्ष ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत विकास के उस पायदान को पार करके विकसित भारत की श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसमें चंद देश ही शामिल हैं। और इसी उपलब्धि को हमने हाल ही में देखा जब एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। और आज संसद में उनके सम्मान में और भारत के अंतरिक्ष मिशनों पर एक विशेष चर्चा भी इस विषय में रखी गई। तो आज हम कार्यक्रम में विस्तार से भारत के अंतरिक्ष मिशनों और भारत की अंतरिक्ष में क्या आकांक्षाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और अंतरिक्ष विषय पर बारीकी से नजर रखने वाले पल्लव बागला जी कार्यक्रम में शामिल हैं। पल्लव बागला जी, बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
चर्चा शुरू करने से पहले हम सुनते हैं भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और आगामी मिशनों पर एक खास रिपोर्ट।
भारत ने पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं हासिल की हैं। गर्व से भरे राष्ट्र ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटकर अब भारत एक और बड़े कदम की ओर बढ़ रहा है। 2027 तक गगनयान अभियान के तहत पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पूरा किया जाएगा और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उल्लेखनीय ऊंचाइयां छुई हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का अंश।
हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व होगा। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स अब सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं।
भारत की उपलब्धियों की यात्रा में हाल ही में कई नए अध्याय जुड़े हैं। निसार उपग्रह, जो इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ। ये उपग्रह भूमि और बर्फीले क्षेत्रों में हो रहे बदलाव, पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है। इसके तुरंत बाद 25 जून को एक्सियम 4 मिशन ने भारत के साथ पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। ये सभी देशों के लिए 4 दशकों बाद पहली सरकारी प्रायोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान थी। इसके अलावा 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग और सर्विसिंग मिशन के तहत भारत चौथा देश बना जिसने निचली कक्षा में उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की। इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि भारत अब डॉकिंग, अनडॉकिंग, रिफ्यूलिंग और पेलोड ट्रांसफर जैसी जटिल क्षमताओं में निपुण हो चुका है। भारत की अंतरिक्ष गाथा में 14 जुलाई 2023 का दिन भी इतिहास में दर्ज है, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई। इसके तुरंत बाद 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में रवाना हुआ और ये भारत का पहला सौर मिशन बन गया। इसी क्रम में 2023 में नेविक प्रणाली की शुरुआत हुई, जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित है और देश को स्वदेशी नेविगेशन की नई ताकत प्रदान करती है। इन उपलब्धियों के साथ 2021 से 2024 तक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला भी लगातार अंतरिक्ष में भेजी गई। इससे पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में भारत की उपस्थिति को मजबूत किया। यद्यपि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो सकी, लेकिन इस मिशन ने वैज्ञानिक आंकड़े और तकनीकी अनुभव प्रदान किए। भारत का मंगलयान भी 23 सितंबर 2014 को अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ, जब इसरो चौथी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी बना जिसने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक यान पहुंचाया। इन सारी उपलब्धियों के बीच एक और बड़ा परिवर्तन आया है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला है और आज 300 से अधिक स्टार्टअप्स और कंपनियां इसमें सक्रिय हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है।
आज जो विशेष चर्चा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में संसद में रखी गई और जिसमें भारत के आगामी मिशनों पर भी चर्चा हुई है, तो ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय के लिहाज से कैसे ये सभी में एक चर्चा और एक दृष्टिकोण अंतरिक्ष के प्रति भारत का जो नजरिया है या जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको और ज्यादा फैलाएगी?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अंतरिक्ष को गवर्नेंस में कैसे यूज किया जाए उसके ऊपर बड़ी पैनी नजर रखती है। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री या गगन यात्री बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए और अपना काम उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक पूरा किया, उनके घर वापसी पे ये बड़ी अहम चर्चा थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जिसमें भारत के विज्ञान मंत्री ने बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया कि भारत के जो प्रोग्राम है वो क्या क्या है अंतरिक्ष में। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 18 दिन के लिए रहे। उनका 20 दिन का दौरा था अंतरिक्ष का और वो फाल्कन 9 क्रू ड्रैगन से गए थे और वहां पे उन्होंने भारत के लिए 7 एक्सपेरिमेंट भी करे और ऐसा करने वाले वो दूसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं भारत के, तो 21वीं सदी में वो पहले हैं। इससे पहले 1984 में भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा रशियन स्पेस स्टेशन पे गए थे, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए। और ये पहला पड़ाव है भारत का अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए जिसमें कि हम एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमवर्क दिया था कि आप वहां जाओगे तो अपना काम करके डॉक्यूमेंट करोगे और उम्मीद है कि वो उन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना होमवर्क दिखाया होगा उन्होंने।
पल्लव वागला जी, 6 दशक पहले हम एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम हुए थे, लेकिन आज हमारी योजना है कि हम 2-3 साल के अंदर ही अंतरिक्ष में गगन यान के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजें, तो हमारी जो अंतरिक्ष को लेकर अभी तक की प्रगति है और जो ये गगनयान मिशन है, ये किस तरह से एक बहुत बड़ा पड़ाव होने जा रहा है भारत की, खासतौर पर अंतरिक्ष की स्वदेशी तकनीक को लेकर और अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की इस प्रगति में, ये कैसे एक बहुत बड़ा मिशन होगा?
देखिए, पहला जो भारत का रॉकेट था वो अमरीकी रॉकेट था, नाइकी अपेची रॉकेट था और आज भारत के पास अपने कई रॉकेट हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके संग प्राइवेट सेक्टर भी 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है, तो इस तरह के हमारे पास कई रॉकेट हो गए। तो जो धीमे से शुरुआत हुई थी अब तेजी पकड़ के, हाँ, गगनयान प्रोग्राम जो है भारत का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें एक भारतीय को भारतीय रॉकेट से भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंशा है कि ये 2027 में हम पहले भारतीय को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेज पाए और अभी तक केवल 3 देशों के पास ये काबिलियत है कि अपने रॉकेट से, अपनी ताकत से वो अंतरिक्ष में भेज पाए। पहला रूस था, फिर अमेरिका और उसके बाद चीन। तो अगर भारत कर पाएगा तो 4th देश बनेगा और ये बहुत ही, इसको कहा जाए, अगर मैं धीमे से समझाऊं तो ये हनुमान लीप है भारत के लिए और हनुमान लीप टेक्नोलॉजी की भी है और हनुमान लीप इसलिए भी है क्योंकि ये विकसित भारत की ओर भारत को ले जाता है। आसान नहीं है, भारतीय वैज्ञानिकों के पास ताकत है, वो करके दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
अगले दशक में जो एक बहुत बड़ी परियोजना भारत अंतरिक्ष में देख रहा है, अपना स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष में स्थापित करना, तो ये कितनी बड़ी एक अंतरिक्ष की भारत की आकांक्षा है और कितना बड़ा ये कार्यक्रम साबित होगा आने वाले समय में?
भारत के अपने गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक भाड़े के रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए और उस पे भारत ने 548 करोड़ रुपए खर्चे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को हिदायत दी है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम दिया गया है और उसके आगे 2040 तक एक भारतीय को चांद पे पहुंचाने की हमारी मंशा है। तो ये जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं जो कि इस सरकार ने दिए हैं इसरो को और इसरो के पास ताकत है पूरा करने की और मुझे उम्मीद है कि वो कर पाएंगे इसको।
एक अहम सवाल ये यहाँ आता है कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने अंतरिक्ष प्रगति को तो देखा, लेकिन नीतिगत स्तर पर भी जो कुछ बड़े निर्णय हुए हैं, जैसे निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी हमने देखा बढ़ी है, और एक आंकड़ा है कि 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भारत में उभरे हैं। तो अब भारत में जो अंतरिक्ष का जो निजी क्षेत्र है वो कैसे अपनी इस प्रगति को और आगे बढ़ा रहा है, और खासतौर पर जो नए जो नवाचार है, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं, वो और कैसे भारत की अंतरिक्ष क्षमता को आगे बढ़ाने में मददगार होगी?
देखिए, अभी तक जो था भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी वो पूरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो के पास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको कहा कि नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर को भी सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपना इनोवेशन कर सके। तो इस वक्त 300 से ज्यादा करीब स्टार्टअप हैं, जैसे भारत के विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पार्लियामेंट में भी बताया, और ये रॉकेट भी बना रहे हैं, सैटेलाइट भी बना रहे हैं। अग्निकुल है और स्काई रूट है, ये रॉकेट बना रहे हैं, और उसी तरह से पिक्सेल है, सैटश्योर है, पियरसाइट है, ये सैटेलाइट बना रहे हैं। तो हमारे जो स्टार्टअप हैं वो इनोवेशन और निम्बल तरीके से नए नए सैटेलाइट बना रहे हैं जो कि बिल्कुल कटिंग एज के हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसरो को भूल नहीं सकते, इसरो की जो क्षमता है वो अपनी जगह है, और इसरो ये स्टार्टअप्स का हाथ पकड़ के इनको सिखा रहा है चीजें। बिल्कुल, पैसा निजी क्षेत्र का लगेगा, इसरो की काबिलियत है, और दोनों मिलके भारत को सक्षम और सुरक्षित रखेंगे।
बिल्कुल, तो क्या जैसे गगनयान मिशन है और वीनस मिशन का आपने जिक्र किया, चंद्रयान मिशन का भी अगला पड़ाव हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें इसरो के साथ ऐसे जो इनोवेटिव विचार हैं आज के युवाओं के, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे अपनी तकनीक से मददगार होंगे इन आगे आने वाले मिशन में?
देखिए, अभी जो भारत के स्टार्टअप हैं वो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और छोटे रॉकेट बनाने में लग रहे हैं। वीनस का मिशन हो या फिर गगनयान हो, इसमें अभी भारत के स्टार्टअप्स का रोल कम है। आने वाले टाइम में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन स्टार्टअप्स का रोल अगर कम है तो ये नहीं समझना चाहिए कि भारत की इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। भारत की जो अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे शुरू से भारत के स्पेस प्रोग्राम में कॉन्ट्रीब्यूशन करते आए हैं। तो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन रहेगा, स्टार्टअप्स अपना रोल प्ले करेंगे, और धीमे धीमे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो बड़े काम भी कर पाएंगे। तो अपने इंडिपेंडेंट मिशन करने में उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखिए टैलेंट इतना ज्यादा है और हुनर इतना है हर तरह से कि वो जरूर निखरेगा।
भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष मिशनों की प्रगति को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमने देखा कुछ ऐसे इनोवेटिव हमारे आगे आने वाले मिशन भी हैं। जैसे एक खास मिशन है कि 2030 तक हमें जो भी अंतरिक्ष मिशन भेजने हैं वो डेबरी फ्री हो, मलबे से मुक्त हो। तो इस तरह के जो सस्टेनेबल स्पेस मिशन की ओर भारत अपना रुख कर रहा है वो कैसे बहुत महत्वपूर्ण है?
देखिए, स्पेस डेब्री या अंतरिक्ष कचड़े को लेके लोगों को बहुत जागरूकता हो गई है कि अब बारी बारी वहां पे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकेगा। ज्यादातर कचड़ा जो है वो इस वक्त अमेरिका का है। भारत ने अपने कदम अभी रखे हैं अंतरिक्ष में, तो अभी से हमने इसरो ने तय किया है कि वो अंतरिक्ष में कचड़ा नहीं करेगा। तो हमारे रॉकेट जो है अपना काम करके वापस धरती पे गिर जाते हैं, जल जाते हैं, हमारे सैटेलाइट अपना काम करके उनको एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में रख दिया जाता है, जिससे कि अंतरिक्ष में कम से कम कचड़ा हो। तो एक जो जीरो पोल्यूशन वाला एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको भारत ने अंतरिक्ष में भी पहुंचाया।
तो जिस प्रगति से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, आने वाले वर्षों में हम अंतरिक्ष में नए पायदान और नई मिसाल बनते हुए भारत की जरूर देखेंगे और उसके साक्षी बनेंगे। तो पल्लव वाघला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े, और भारत की जो अंतरिक्ष प्रगति है और आने वाले जो मिशन है उस पर विस्तार से आपने हमारे साथ चर्चा की, जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां और आगामी अभियानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
सुर्खियों में